ओम शांति। जनवरी का यह अव्यक्त मास और यह अव्यक्त तरंगे ब्राह्मणों के जीवन में जो संपूर्णता का पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को तेज गति देने वाला यह मास और आज 18 जनवरी जो कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त आरोहण का दिवस, वैसे तो एक तारीख से हम भिन्न भिन्न अव्यक्त इशारे पढ़ रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं और आज 18 जनवरी के साथ ही परमात्मा मिलन का भी दिवस है। संसार में आज तक बहुत सी आत्माएं आई, महान आत्माएं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, जिन्होंने समाज परिवर्तन किया है। हमने भी अपने जीवन में असंख्य महान आत्माओं के जीवनों का अध्ययन किया है, परंतु हमें याद है कि जब हम भगवान को खोज रहे थे और उस खोज के दरमियान ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की जो किताब है आदिदेव, जो हमारे हाथ में आई थी और हमने ऊपर ऊपर से उसे थोड़ा पढ़ा था, तो उस किताब ने हमारे मन में हलचल उत्पन्न कर दी थी कि जो बातें उसमें लिखी थी वो आज तक कहीं पर भी लिखी नहीं गई थी। तो आज इस अव्यक्त दिवस पर हर बार हम बाबा की शिक्षाएं, बाबा की प्रेरणाएं, उस पर चर्चा करते हैं। बाबा के जीवन में क्या विशेषताएं थी उस पर चर्चा करते हैं और अभी भी कई दिनों से कर रहे हैं। कई भाई बहनों ने अपने अनुभव सुनाए, दादियों के अनुभव सुनाए, जिन दादियों ने बाप से पालना ली थी। तो आज के इस अमृत वेला के बाद के सत्र में हम ब्रह्मा बाबा का जो जीवन था उसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो हर एक ब्राह्मण आत्मा इस जीवन कहानी को जानता है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने यह जीवन कहानी नहीं सुनी या पढ़ी हो। फिर भी क्योंकि वह सृष्टि के सर्व महान आत्मा थे, तो उनके जीवन में ऐसी वो कौन सी बातें थी, ऐसी वो कौन सी कोई बातें थी जिस वजह से वो इतने महान बने, ऐसा वो क्या था उनमें कि भगवान ने स्वयं उन्हें अपना रथ चुना। तो आज की क्लास और कल की क्लास, इन दो क्लासों में हम ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनके जो जीवन में बातें हुई है, उन सभी की संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे गीता में 18 अध्याय 18 एपिसोड्स, वैसे ही ब्रह्मा बाबा के जीवन का अंतिम, जो कि गीता का भी 18वां अध्याय है, वो कौन सा है? नष्टो मोह। तो ये जो स्मृति स्वरूप की स्थिति थी, ये जो स्मृति लब्धा की स्थिति थी, वो उन्होंने कैसे पाई? तो उनके जीवन में ऐसे वो कौन से अध्याय, कौन से एपिसोड्स, कौन से वो खंड, कौन से वो कैंटोस थे, उसकी हम थोड़ी यहां पर चर्चा करेंगे। हर बार जब भी यहां हम किसी वरिष्ठ भाई या बहन को बुलाते हैं, मधुबन निवासी हो या जिन्होंने बाबा के साथ के अनुभव किए हो या दादी के साथ के अनुभव किए हो, एक बात उन्हें हमेशा पूछी जाती है कि आपने कोई साक्षात्कार किए है क्या, आपको कोई डिवाइन विजन्स दिखे है क्या। हमें अपने जीवन का याद है कि हमने कोई आज तक कोई साक्षात्कार नहीं किया, परंतु हां एक बात जो आज अमृत वेले हमें याद आई और जो हमारे जीवन में हुई थी, वो एक ऐसी बात थी कि शायद ही हमें लगता है आज तक हमने उसकी कहीं चर्चा की। वो एक स्वप्न था जो हमने देखा था और जिसके ऊपर हमने लिखा भी था अज्ञान काल में। वो समय वो था जब हमारी बहन ज्ञान में आ चुकी थी, परंतु हम नहीं। उस समय हमें याद है हमने एक रात्रि में स्वप्न देखा था जिसमें ब्रह्मा बाबा को देखा था, और उस स्वप्न का और स्वप्न देखने के बाद हमने अपने हमारी बहन से कहा था कि हमने आपके बाबा को देखा, देखना चाहिए था तुमने, पर देखा हमने क्योंकि वो तुम्हारे बाबा है, हमें तो उनसे कोई लेना देना है नहीं, पर ये जो चित्र तुम्हारे पास है, इस चित्र को हमने देखा है। और हमने देखा था कि एक कमरे में बाबा बैठे हैं, और जैसे ब्रिजिंद्रा दादी अपने अनुभवों में सुनाती है कि बाबा बैठे और कमरा लाल हो गया और आंखें लाल हो गई, तो वो दृश्य हमने उस स्वप्न में देखा था। तो ऐसे अनेक अनेक भाई बहने हैं जिन्होंने बाबा को देखा, विदेश में तो ऐसे कई सारे भाई बहने हैं, और उन्हें स्वप्न में प्रेरणा आई कि यहां पर चलो, और उस रीति से वो ज्ञान में आए। तो बाबा की जो जीवन कहानी है, बाबा के जो जीवन चरित्र है, जैसे हमने कहा कि 18वां अध्याय जो गीता का है, इसको हटा दो या उसको हटा, जैसे गीता में 18 अध्याय है और 18वां अध्याय नष्टो मोह है, तो उस नष्टो मोह तक बाबा कैसे पहुंचे, ऐसे वो उनके जीवन के 18 अध्याय हम देखेंगे, या फिर कहो कि संपूर्ण जीवन कहानी। आप सभी जो बातें हम सुनाएंगे, वैसे तो उनकी जीवन कहानी इतनी बड़ी है, असंख्य भाई बहनों ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं, और इतने सारे बहुमुखी चरित्र है कि हमें लग रहा था सुबह से कि आज की जो क्लास है बहुत कठिन क्लास है, जीवन कहानी सुनानी है। ज्ञान सुनाना थोड़ा सहज है, परंतु किसी की जीवन कहानी, और वो भी संसार की किसी आत्मा की नहीं, इस सृष्टि के आदि पिता की, इस सृष्टि के प्रजापिता की कैसे सुनाया जाए, कितना कठिन कार्य है। तो जैसे गीता में 18 अध्याय है, वैसे ब्रह्मा के जीवन के भी 18 अध्याय है। तो उनके जीवन के जो 18 अध्याय है उसमें से 9 अध्याय आज हम देखेंगे और 9 अध्याय कल देखेंगे। शुरुआत बचपन से करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं बाबा का जन्म कब हुआ था, सिंध के छोटे से प्रांत में, 15 दिसंबर 1876। तो जीवन का जो पहला अध्याय है उसका हम नाम देते हैं व्यवहार और व्यापार, या कहो बचपन, व्यवहार और व्यापार। व्यापार, जो भी महान आत्माएं संसार में हुई है उनके जीवन में महानताएं बचपन से ही नजर आई है, ऐसे नहीं कि वो अचानक से महान बन गए। और इससे पहले कि हम उनके जीवन को देखें, हमें उस समय की कुछ परिस्थितियों को भी देखना होगा। समाज किस तल पर खड़ा था उस समय, वह था जबकि भौतिकवादिता, नास्तिकवाद बढ़ रहा था। 3 ऐसे विदेश के लोग थे जिनका प्रभाव सारे संसार पर पड़ रहा था। पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा सिगमंड फ्राइड और तीसरा चार्ल्स डार्विन। इनके जो भी सिद्धांत थे समाज पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था या पड़ रहा था, क्योंकि धर्म में जो बातें लिखी थी शास्त्रों में वो सभी बातें झूठी सिद्ध हो रही थी। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांतों में ऐसी सब बातें लिखी कि कहा कि काम ही केंद्र बिंदु है, हर एक मनुष्य आत्मा में, हर एक मनुष्य के अवचेतन में काम के अतिरिक्त और कुछ भी समाया हुआ नहीं है। अगर इसको दबाओ तो विक्षिप्तता उत्पन्न होती है, और सारे विश्व ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया, तेजी से यह फैला। चार्ल्स डार्विन के जो सिद्धांत थे कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है प्राणियों से हुई है, कार्ल मार्क्स रूस में जो सिद्धांत कम्युनिज्म का चला, चारों ओर नास्तिकवाद। ऐसी जब नास्तिकता की आंधी चल रही थी संसार में, और जो गीता में लिखा है, जो कि एक बार ट्रेन में जब ब्रह्मा बाबा जा रहे थे तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा था जब वो गीता पढ़ रहे थे कि गीता में लिखा है जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं, तो उन दादी ने पूछा था कि धर्म की ग्लानि तो अब हो रही है तो भगवान कब आएंगे। तो ये सुनकर बाबा सोच में पड़ गए थे, अज्ञान का काल था बाबा का। तो हम कह रहे थे समाज की क्या व्यवस्था थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, स्त्रियों की क्या दशा और दिशा थी उस समय, घूंघट में रहने वाली स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती थी, उन पर अत्याचार, समाज की रूढ़िवादी था। पिटे पिटाए मार्ग पर चलने वाली संसार की प्रवृत्ति, समाज में कुरीतियों का चलन, समाज में अनेक अनेक बुराइयां। ऐसा नहीं कि समाज में महान आत्माएं नहीं आई, उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया। इस संसार में अनेक अनेक महान आत्माएं आई और उन्होंने परिवर्तन के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हर संभव प्रयास किया इस संसार को बदलने के लिए, परंतु उसके बावजूद भी पहला महायुद्ध और फिर दूसरा महायुद्ध, नफरत की आंधी, मनुष्य मनुष्य के मन में प्रेम न रहा, ऐसी पार्श्व भूमि पर ऐसे एक बालक का जन्म। जैसे हमने कहा कि ये हम नहीं कह रहे कि संसार में जो आत्माएं आई वो महान नहीं थी, सभी महान थी, हर क्षेत्र में महान आत्माएं आई, विज्ञान के क्षेत्र में भी महान आत्माएं आई, और ऐसे नहीं कि केवल अब आई, हम द्वापर से देखेंगे तो अब तक आती रही, चाहे धर्म स्थापक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, राजनीतिक सुधार के रूप में, सुधारक के रूप में, अध्यात्म में क्रांति लाने वाली आत्माएं, ऐसी असंख्य आत्माएं इस जगत में आई है। हर एक की जीवन कहानी महान है, हर एक का चरित्र महान है, परंतु उनमें से कोई भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, उनमें से कोई भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यह जीवन गाथा और ही ज्यादा प्रासंगिक और ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुरुआत हम बचपन से करते हैं। बचपन, जन्म हुआ, और जैसे कहा कि महान आत्माओं के जीवन में बचपन से ही महानता झलकती है। जीवन चरित्र सुनते सुनते हम एक एक गुण भी उठाएंगे साथ साथ। सभी ने सुना है, यह क्लास केवल एक रिवीजन क्लास है, कि बचपन में उनका नाम लेखराज रखा गया। स्वभाव बहुत ही नम्रचित और बहुत ही आज्ञाकारी, परंतु मां के प्रेम का सुख नहीं था। छोटी आयु में मां चल बसी, कभी पिता भी बहुत बीमार पड़े, बहुत बुखार आया, गांव में कोई डॉक्टर नहीं थे, बैलगाड़ी पर सोचा वो उनको लेके जाते समय ही बीच में ही देह त्याग कर दिया पिता ने। तो यह वह बालक है जो कि अनाथ हो गया था। कुछ कहानियों में बताया है कि कोई बाजू में कोई एक महिला थी लक्ष्मी नाम की, उन्होंने उसे मां का प्रेम दिया, परंतु यह जो बालक था बचपन में ही जैसे अनाथ हो गया, मां बाप के प्रेम से वंचित। वास्तव में बालक को उच्च संस्कार उसके मां बाप से आते हैं, फिर भी यह बालक बहुत ज्यादा आज्ञाकारी, हृदय में सारे विश्व के प्रति प्रेम की भावना उस आयु में। एक होता है बहुत कुछ पढ़ने के बाद चीजें समझ में आना, महान आत्माओं के जीवन का अध्ययन करना और बाद में समझ में आना कि क्या करना चाहिए। एक होता है बचपन से ही वो संस्कार लेकर आत्मा आती है, जो कि बाद में बाबा को जो शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए तो उनके ही बहुत सारे जन्मों के साक्षात्कार कराए, पूर्व जन्मों के। तो ये जो आत्मा थी शायद पूर्व जन्म में, हर जन्म में इतनी महान हुई होगी, तो ही इसको भी हटा दूं। इतनी महान हुई होगी तभी से बचपन से ही विश्व कल्याण के संस्कार, बचपन से ही दूसरों को मदद करने के संस्कार, आज्ञाकारिता के संस्कार। हम ये भी सोच रहे थे कि शिव बाबा ने इनको क्यों चुना, हम साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि बनी बनाई आत्मा थी। एक होता है ज्ञान में आने के बाद हमें ये बताया जाता है दिव्य गुणों का श्रृंगार करो, धारणा। परंतु बाबा के जीवन में यदि देखो तो शिव बाबा की प्रवेशता के पहले ही सारे दिव्य गुण विद्यमान थे। ऐसा वो कौन सा गुण था जो नहीं था? भक्ति भी श्रेष्ठ भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा भी परम श्रेष्ठ, ऐसा शायद ही कोई बात थी कि जो दिव्य गुणों में नहीं आती है। सारे दिव्य गुण पहले से ही विद्यमान थे, ऐसे दिव्य गुणों को लेकर ही आत्मा ने जन्म लिया था। तो और ये भी सबको पता है, जब भाई के साथ में अनाज का व्यापार करते थे तब भी वृत्ति कैसी थी? दान की वृत्ति थी, गरीबों को मदद करने की वृत्ति थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भक्ति भी इतनी श्रेष्ठ, तो हृदय की निर्मलता, परमात्मा के प्रति प्रेम, जबकि परिचय नहीं था परंतु तब से ही भक्ति भी चालू हुई थी। विष्णु के भक्त थे, प्रार्थना किया करते थे, और भाई को जब ये पसंद नहीं आया कि ये लड़का तो मेरा धंधा क्या कर देगा, चौपट कर देगा, तब उन्होंने क्या किया, उस बालक ने ये सोचा कि मैं इस काम को अब नहीं कर सकता, अलग से व्यापार चालू किया और धीरे धीरे दिखाया है। बाद में मुंबई गए, जौहरी का व्यापार सीखा और एक बड़े जौहरी बने। तो बचपन और व्यवहार और व्यापार, व्यापार में भी जब जौहरी बने तो भी अपने प्रोफेशन में भी परफेक्ट, अपने प्रोफेशन में भी परफेक्ट, और केवल परफेक्ट नहीं, उसमें भी क्रिएटिविटी, हर एक जेवर जो बनाते थे वो नया हो, उसमें नई डिजाइन हो, नए प्रकार का हो। तो अपने प्रोफेशन में भी क्रिएटिविटी, आगे चल के यही सेवा में क्रिएटिविटी का रूप धारण किया इसी ने, कि सेवा में नवीनता कैसे हो। परंतु संस्कार तभी से था, बचपन से ही वो संस्कार। और क्योंकि वो इतने ऑनेस्ट थे, ईमानदार अपने प्रोफेशन में, सभी ने सुना होगा कि उन्हें कितना मान सम्मान प्राप्त था। धन तो प्राप्त हुआ ही, पर धन के साथ में सम्मान भी प्राप्त हुआ, बिजनेस का विस्तार हुआ और कलकत्ता में बहुत बड़ा व्यापार स्थापित हुआ, मुंबई में बार बार आना जाना। जितने मित्र संबंधी थे उन सभी का उनसे बहुत स्नेह था। एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में इतना स्नेही हो जाए, ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। सोसाइटी में, समाज में सम्मान प्राप्त कर ले, वो तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका व्यवहार, उसका आचरण इतना शुद्ध, श्रेष्ठ, महान हो। जो सभी ने सुना है कि उदयपुर के महाराजा ने अपना दरबार रोक दिया था जब तक कि दादा न आए, नेपाल नरेश सभी को उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान, यहां तक कि वो अंदर जा सकते थे, जनान खाना जिसको कहते हैं, किसी को ऐसा नहीं महसूस होता था स्त्रियों को कि इनकी दृष्टि में जरा भी अपवित्रता है। तो वो पवित्रता के संस्कार तभी से थे, यहां तक कि जो उनकी युगल थी जशोदा, उनके पिता को भी ये संकल्प क्यों आया कि मेरी पुत्री का विवाह इसके साथ क्यों करे, देखा जब इतना ईमानदार है, सच्चरित्र है, ये तो भगवान की प्रवेशता ही नहीं हुई है, तब के चरित्र है, वो प्यूरिटी ऑफ पर्सनैलिटी तभी से है, वो श्रेष्ठ दृष्टि तभी से है, वो प्रेममयी वात स्वभाव तब से ही है, वो कर्म में कुशलता कौशलता तभी से है, विश्व के प्रति रहम दिल का भाव तभी से है। तो ये तो बचपन, व्यवहार, व्यापार, व्यापार का विस्तार, और उस विस्तार से धन कमाया बहुत उस जमाने में, और धन में फिर दूसरी एक बात, दान पुण्य का संस्कार जो है वो दे देने का संस्कार, व्यवहार में भी दिखाया है, कई सारी दादियों ने अपने अनुभव सुनाए हैं। निर्मल शांता दादी विशेष तौर पर सुनाती है कि जब भी हम चिल्लाते थे, आवाज करते थे, गलती करते थे, और या फिर जो हीरे नीचे गिरा देते थे, तो बाबा कहते जाओ बच्ची ऊपर जाओ, ऊपर के कमरे में जाओ, बाबा को काम करने दो। बाबा ने कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा शायद ही कहीं रिकॉर्ड है कि बाबा ने कभी किस पर क्रोध किया। तो क्रोध जीत तो पहले से ही है, विकारों जीत की अवस्था तो पहले से ही है, कभी किसी पर क्रोध किया, किसी को चिल्लाया, ये भी उदाहरण देते हैं कि दो बच्चे आ गए अपने पिता के साथ और वो हीरे की थैली जो थी छोटी पोटली वो लेके चले गए, उनको लगा इसको बेचकर मिठाइयां खरीदेंगे, पर बाबा ने उनके घर में जाकर उनको मिठाइयां दी और उनको भी नहीं डांटा, पर आंख दिखाना, डांटना नहीं तो व्यापार में ये सब चीजें बहुत होती है, परंतु कहीं रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा, ये तो पहला अध्याय है जीवन का, जो बचपन इतना श्रेष्ठ, व्यवहार इतना श्रेष्ठ और व्यापार में भी इतना श्रेष्ठ, जीवन का दूसरा अध्याय भक्ति और गुरु। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है उन्हें बाप सबसे पहले आके मिलते हैं। इस सृष्टि में भक्ति का शुभारंभ करने वाला ही कौन है? शायद प्रजापिता ब्रह्मा। भक्ति की नींव ही वहां से पड़ी द्वापर में, भक्ति का, भक्ति की शुरुआत। सबसे ज्यादा शास्त्र शायद किसने लिखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे तो वो वही आत्मा है। और इस अंतिम जन्म में भी देखा गया है बचपन से ही, जैसे कहा विष्णु के भगत थे, और जब बड़े भी हुए तो हर जगह विष्णु का चित्र रखते थे, हर जगह, ऑफिस में एक, ट्रेन में भी जेब में एक, घर में अलग अलग कमरों में, अलग अलग कमरों में। तो कितनी ज्यादा भक्ति होगी, और एक गुरु से पेट नहीं भरा, कितने सारे गुरु किए, और गुरु के प्रति भी कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा। गुरु का आदेश तो काल का आदेश दिखाया है जीवन में। एक बार गुरु ने अचानक बुलाया तो चले गए, और कारण कितना छोटा सा कारण था, पैसे देने थे किसी को, गुरु के किसी शिष्य को जो कि जुए में हार चुका था। अगर हमको अगर बुलाया जाए अचानक कहीं पर और पता चल जाए कि ये कारण तो एकदम ही फालतू था, तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन क्या होगी? क्रोध। तो वहां जाकर भी बाबा ने क्रोध नहीं किया। कौन सी वो डीप अंडरस्टैंडिंग होगी ह्यूमन नेचर की उस व्यक्ति में, किस तरह की भक्ति भाव होगा जो कि गुरु में ही सब कुछ समझना, सब कुछ देखना, गुरु को इतना महान मानना, ये कोई सादी बातें नहीं है। जिस व्यक्ति में अथाह भक्ति के संस्कार हो तभी यह संभव है। और जैसा सभी ने सुना है, बाबा कहा करते थे कि मैंने लक्ष्मी को उसकी सेवा से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ये नहीं देख सकते कि स्त्री, ये वो समाज था जहां जन्म हुआ सिंध में, सिंधियों के बीच बिंदी का आगमन एक सिंधी के तन में, तो वह जो सिंधी समाज है, हमें कोई वरिष्ठ भाई बता रहे थे कभी, वहां की जो भाषा भी होती है बहुत ही कठोर भाषा होती है, रफ भाषा होती है, बात बात में गाली, रूटीन। स्त्रियों को अधिकार नहीं है घर से बाहर निकलने का, घूंघट ही नहीं उठाया होगा किसी स्त्री ने, वहां पर नीचा समझा जाता था। तो ऐसे उस समाज में बाबा का माताओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति कितनी श्रेष्ठ दृष्टि थी कि चित्रकार से कहा कि दूसरा चित्र बनवाओ, ये चित्र बाबा को पसंद नहीं। तो ये भी एक बात, भक्ति में भी श्रेष्ठ भक्ति की जितनी रस्म रिवाज होगी उस सभी की शायद ही ऐसी कोई, ऐसा कोई स्थान होगा जहां की तीर्थ यात्राएं नहीं की। जहां जहां जिसने बोला वहां वहां गए, तीर्थ यात्राएं की, भक्ति की जो साकार मुरलियों में बातें आती है, बहुत सारी बातें आती है, वो सब कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बोल रहा है, शिव बाबा इस सब की चर्चा नहीं करते हैं। शिव बाबा ये सब बातें नहीं बताते। तो बाबा ने जो भक्ति भी की वो परम भक्ति थी, वैराग्य जो था वो परम वैराग्य था, और ज्ञान भी जो लिया बाद में वो परम ज्ञान था। तीनों ही चीजों में सबसे आगे भक्ति, वैराग और ज्ञान। और यदि हम एक देखें कि जो परमात्मा की प्रवेशता हुई या जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी जो भूमि थी वो भक्ति की भूमि थी, वैराग की भूमि थी। बाद में उस भूमि पर भगवान का आगमन हुआ है जो कि पहले से ही तैयार थी ये सब बातों के लिए, इस ज्ञान को धारण करने के लिए अनुभव थे सारे जीवन के। तो ये दूसरा अध्याय जीवन का। उसके बाद तीसरा अध्याय परमात्म प्रवेशता। तीसरा अध्याय परमात्म प्रवेशता, दिव्य साक्षात्कार और बेहद का वैराग, ये तीनों ही बातें उस तीसरे अध्याय में है। बाबा तो, शिव बाबा हमेशा कहते हैं मैं जब आता हूं उसकी क्या नहीं है, तिथि तारीख नहीं है। 32 से ही बाबा ने बहुत सारी डायरिया लिखना चालू की थी। उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे बाबा धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक संवाद है जशोदा का और बाबा का, जिसमें जशोदा बाबा से कह रही है कि बाबा अभी हम वानप्रस्थी हो जाते हैं, बच्चे हो गए, शादी हो गई, हम वानप्रस्थी हो जाते हैं। परंतु बाबा ने तब कहा था कि कुछ समय और रुको, कुछ समय थोड़ा पैसा और कमाते हैं, ताकि फिर उसके बाद में सब दान पुण्य कर देंगे, बच्चों को सौंप देंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये जो बात थी कि क्या होने वाला है, उसका शायद उन्हें उस समय उतना अंदाजा नहीं था, परंतु हाँ, मनोवृत्ति धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगी थी। और जब बाबा मुंबई में थे, तब वो पहला साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज विष्णु का। गुरु से पूछा तो गुरु को कुछ खबर नहीं थी, और बाबा को लगा कि ये क्या था, और बाबा बहुत डीप चिंतन में पड़ गए थे। यहां तक कि चिंतन से याद आया कि विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए बाबा सिंधु नदी के तट पर बैठकर एकांत में प्रार्थना करते थे। ये भी एक योगी के लक्षण है, एकांत प्रिय होना। कब? अभी भगवान की प्रवेशता ही नहीं हुई है, तब से ही एकांत का रसास्वादन करना, एकांत में बैठना और सारे जगत के लिए प्रार्थना करना। और फिर ये अचानक साक्षात्कार। साक्षात्कार को समझने के लिए फिर अपने मित्र के घर रुके कानपुर में, वहां बहुत सारे साक्षात्कार, सृष्टि के विनाश का साक्षात्कार। एक ही ऐसा ये समय है मुझे लगता है संपूर्ण ब्रह्मा के जीवन में, ब्रह्मा कहो या ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे, परंतु दादा के जीवन में जब बाबा की आंखों से आंसू आए, जब बाबा रोए, कौन सा ऐसा, कहीं कोई वर्णन नहीं है कि बाबा कभी रोए। ये एक ही ऐसा दृश्य बाबा के सामने जो दिखा, जब बाबा की आंखों में आंसू आए और बाबा रोए, जब विनाश देखा, महाभयंकर विनाश। पहला महायुद्ध तो हो चुका था, दूसरा अभी हुआ नहीं था। 36-37 की ये बातें। तो वो विनाश का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार, देवी देवताओं का साक्षात्कार, अपने पूर्व जन्मों का साक्षात्कार, वो विष्णु का आना और कहना तत्त्वम, ये सब जैसे कि बेबूझ पहली की तरह था। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है, और बाबा सोचते रहते थे इसके बारे में। परंतु हाँ, कानपुर से जो पत्र लिखा था, खजाना मिल गया, पा लिया। जिनको ये पत्र मिला वो भी समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। फिर घर आए सिंध में, फिर वहां और एक साक्षात्कार, जिसकी चर्चा ब्रजिंद्रा दादी ने अपने अनुभवों में बहुत बार सुनाई है और सभी जानते हैं। एक दिन शाम की बेला थी, हम बात सुनाते हैं, शिव ने तन में प्रवेश किया, वो झलक सुनाते हैं, दिखाते हैं। तो दादी ने जो अपने अनुभव में लिखा है कि सत्संग के बीच लालजी महाराज जो आए थे और बाबा अचानक उठ के चले गए और अगले दूसरे कमरे में बैठ गए, कमरा लाल हुआ, आंखें लाल हुई, और जो व्यक्त आवाज निकली, दादी ने जो अपने अनुभव में लिखा है कि कैसे दादी ने देखा बाबा का वह रूप, बाबा का वह स्वरूप, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य का इस तरह से लिखा हुआ एक गीत है, शिवोहम शिवोहम। यहाँ वो शिव स्वयं माया, स्वयं उस शिव की पधारण में सन्निवेश, शिव का सन्निवेश, शिव का उस तन में बैठना। और उसके बाद बाबा ने कहा कि वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट था, वो एक माइट था। अचानक ये सारी जो बातें हो रही है कैसे अनुभव हो रहे होंगे, हम ये सोच रहे थे कि एक व्यक्ति व्यापार करने वाला जो ये सोचता है अभी और थोड़ा सा धन कमाएंगे, जो ये सोच रहा है कि अभी सब कुछ सौंप देंगे और फिर बाद में वानप्रस्थी हो जाएंगे, उसके जीवन में अचानक सारे साक्षात्कार और अचानक वैराग्य का उदय, अचानक जैसे देह की सुध-बुध भूल जाना, उस परम आनंद का अनुभव करना, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, उस परम धाम का अनुभव करना, कैसे अंदर संकल्पों की हलचल और फिर कैसे अंदर में एक असीम शांति का अनुभव हुआ होगा। बाबा को वैराग हुआ सभी बातों से, कलकत्ता गए और उनका जो पार्टनर था सेवक राम, जब उससे कहा कि अब आप संभाल लो, उसके लिए भी जैसे एक शॉक था, एक शॉकिंग न्यूज थी कि उनके बिना ये कैसे चलेगा। उसने कहा था कि मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, आपके बिना ये नहीं चल सकता, परंतु एक अलौकिक मस्ती ने बाबा को घेर रखा था जो वो खुद भी नहीं समझ पाए थे ये क्या हुआ। और बाद में जब अपने काका मूलचंद को उन्होंने देखा था और उसके कुछ दिनों के बाद वो दृश्य उनके सामने आया था, आत्मा पैरों तक गई और पैरों से निकल गई, ये सीन भी बाबा के मन में बहुत दिनों तक घूमता रहा। और बाद में ही बताया जाता है कि बाबा ने इसी बात का बहुत अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, राधिका आत्मा है, सब आत्माएं हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ब्रह्मा के संपूर्ण बनने का राज क्या है। एक पुरुषार्थ जो बाबा ने किया और जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, सबसे ज्यादा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डायरिया भर दी, दीवारें भर दी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दिन रात यह पुरुषार्थ आत्मा का, और यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, क्योंकि देहभान के संस्कार आत्मा में बहुत अधिक है। और एक एक सूक्ष्म बात है, बाबा को जैसे फिर चौथा अध्याय सत्संग है, चौथा अध्याय सत्संग, उसमें एक सूक्ष्म बात हमें याद आती है कि बाबा को एक बात का बहुत पश्चाताप हुआ बाद में, बहुत ज्यादा पश्चाताप, जो उन्होंने अपने जीवन में कर दी थी, कौन सी हो सकती है। अच्छा, वो भी एक बात है, हाँ, यशोदा की नहीं, उससे एक दूसरी बात, जिन्होंने जो बात उन्होंने खुद की थी उसके बारे में बाबा को एक बहुत गहरा पश्चाताप हुआ, परंतु उस पश्चाताप से वो धीरे धीरे मुक्त भी हो गए। उनकी बेटी की उन्होंने शादी करवाई थी, निर्मल शांता दादी ने भी ये बातें बताई है और बाबा ने भी, जगदीश भाई ने भी एक दो जगह लिखी है कि बाबा ये सोचते थे कि भगवान की अब प्रवेशता हुई है, संगम युग चल रहा है और भगवान पवित्र बनो, योगी बनो का वरदान दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, और मैंने अपनी बेटी का जबरदस्ती विवाह करा दिया, जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, अज्ञान काल में विवाह करा दिया। और दादी भी अपने अनुभवों में लिखती है कि मुझे ये भक्ति वगैरह पसंद नहीं थी कभी इतनी ज्यादा, वो तो मस्त थी अपने उस जीवन में, छोटी बेबी भी थी एक, तो वो तो अपने जीवन में उधर मस्त थी, परंतु बाबा को यह आंतरिक गहन पश्चाताप हुआ था कि मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी, उसे धकेल दिया वासना के मुंह में, और मेरा पहला कर्तव्य है कि इसको पहले बाहर निकालना है, सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है। और जब उसे समझाया तो दादी ने तो बिल्कुल माना ही नहीं ये सब बातें। दादी, वो तो फिर दूसरा अनुभव है दादी का कि कैसे बाबा ने उसे टचिंग कराई और कैसे वो घर में ही रात में बाबा को देखा, और जब उसने कहा था कि मुझे कार लेने के लिए कार भेजना, बाबा ने कहा था कल देखेंगे, सबने सुनी है ये बातें, और फिर रात में साक्षात्कार, दूसरे दिन थोड़ी तबीयत खराब, और फिर उसे वो निश्चय हुआ बाबा पर। तो चौथा अध्याय है सत्संग की स्थापना, ओम मंडली की स्थापना, ओम मंडली नाम क्यों पड़ा। तो बाबा फिर धीरे धीरे अंतर्मुखी रहने लगे, आत्मा की बातें कहने लगे, आत्मा का ज्ञान सुनाने लगे, गीता पर प्रवचन करने लगे और ओम की ध्वनि करने लगे, और सारे हैदराबाद में एक निराले सत्संग की धूम मची, शहर में हवा फैल गई, यहां जो भी जाता है उसे साक्षात्कार होते हैं। सबसे पहला एक साक्षात्कार जो फिर से ब्रजेंद्रा दादी सुनाती है कि सबसे पहले जब एक बार गई तो बाबा नहीं दिखे, कौन दिखा, श्री कृष्ण दिखा, वहीं पर फिर यशोदा आए, उन्होंने भी कृष्ण को देखा, तो उनमें फिर अभी धीरे धीरे सबको कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, जो भी सत्संग में आता उन्हें साक्षात्कार होने लगे। कैसा वो सत्संग होगा, कैसी वो आवाज फैली होगी, ये वहां हो रहा है जहां पर संपूर्ण भौतिकवादिता हो चुकी थी, वहां की स्त्रियां भी श्रृंगार रस भोजन स्वाद में डूबी हुई थी, पाश्चात्य संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव उस समय सिंध पर था, उस समय यह हो रहा है। गुरु तो थे परंतु इतनी उनमें भक्ति नहीं थी, भक्ति भी क्षीण हो रही थी उस समय, और बाबा जो कि शास्त्र पढ़ते थे उसमें, और एक बात है, बाबा को चार भाषाएं आती थी, सिंधी तो थी ही परंतु बाबा का लौकिक शिक्षण इतना नहीं था, उसके बावजूद भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर, सिंधी, हिंदी और गुरुमुखी, क्योंकि सिख धर्मों का भी बाबा ने थोड़ा अध्ययन किया था। तो ये जो सत्संग चला उधर, जो भी आके बैठता था, दादियों के अनुभव में सभी ने सुने होंगे, बैठते थे और देह से अलग हो जाते, शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, दुखी माताएं आती थी और साक्षात्कार हो जाता था, जैसे कल भी सुनाया था, कितनी ऐसी माताएं आई कि जिनका पति गुजर गया था, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई थी, कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने अनुभव, दादियां हैं जिन्होंने अनुभव सुनाए हैं कि बाबा ने उनसे बस एक ही प्रश्न पूछा था, तुम खो कौन, वो बोल में कितनी पावर होगी, जो एक बार कह दिया तुम आत्मा, और उसमें आत्मा स्थित हो जाती थी, फिर वो लाइट की कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, फिर दुख किसका, दुख किसको। तो वो जो सत्संग हुआ, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, पहले घर वाले, फिर निकट संबंधी, दूर के संबंधी, और फिर मित्र, दूर दूर से लोग, गांव, पूरे शहर से लोग आने लगे, तो ऐसा ये सत्संग निर्माण हुआ। पवित्रता की बातें यहां तक बाबा ने नहीं की है, वो धीरे धीरे आई है, परंतु जो भी आता था उसे साक्षात्कार, एक दिव्य अनुभूति, देह की विस्मृति, ऐसा अनुभव जो आज तक उन्होंने एक नहीं किया था जीवन में, वो होने लगा। तो ये एक बहुत ही निराली, अद्भुत, अनोखी बात थी जो आज तक कभी नहीं हुई उस इतिहास में। और उन्होंने ये भी देखा कि ये वही ब्रह्मा है जिनको हमने पहले देखा था, ये वही व्यक्ति है, इसकी पर्सनालिटी में, इसके व्यक्तित्व में कैसा अनुपम परिवर्तन आ गया है, पहले ये ऐसा नहीं था। उस जो तेज, जो ओज, एक अद्भुत सा प्रकाश, सब ने उसको आकर्षित किया। और क्योंकि वहां ओम की ध्वनि होती थी तो ओम मंडली कहा गई। गोपी नाम की माता आई जो फिर बाद में मनमोहिनी दीदी बनी, शोभा नाम की कन्या आई वो फिर बाद में गुलजार दादी बनी, रमा नाम की कन्या आई जो फिर बाद में दादी प्रकाशमणि बनी। ऐसी कितनी ही माताएं और कितनी कन्याएं आई, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार। तो ये सारी जो बातें हुई, ये जो कन्याएं आई, माताएं आई, ये सब इतना अद्भुत था सब कुछ। एक को किसी और ने बताया, जाके देखा क्या हो रहा है, और इस तरह संख्या बढ़ती गई। किसी ने कहा कि इन बहनों के लिए, माताओं के लिए बोर्डिंग खोला जाए, तो बाबा ने बोर्डिंग खोला। वहां पर भी देखा गया कि बाबा ने एक दूसरा दृष्टिकोण है इसे देखने का, बच्चों का विकास, बच्चे, युवा और महिलाएं, इन तीनों के विकास में बाबा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि वो जो बोर्डिंग था वहां पर केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं परंतु लौकिक शिक्षा है, वहां पर मैथमेटिक्स भी था, लैंग्वेज भी थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी पढ़ाई होती थी, वहां की अपनी एक दिनचर्या थी। और ये छोटी छोटी कन्याएं को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कन्याएं और माताएं अब पवित्रता की बातें करने लगी, धीरे धीरे पवित्रता पर क्लास कराने लगी। ब्रह्मचर्य की बातें वहां होती नहीं थी, ब्रह्मचर्य एक बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है और वो माताएं कर रही है, छोटी छोटी कन्याएं इस पर बोल रही है। ये एक सब कुछ ही आश्चर्यजनक था, सब कुछ आश्चर्य तो साक्षात्कार का, इस सत्संग का, और गीता की जो परिभाषा दी जा रही थी वो भी एक अलग ढंग से दी जा रही थी। गीता पर जिस प्रकार से प्रवचन हो रहे थे, बाबा को भी धीरे धीरे सत्संग से पहले ही या उस दरमियान ही ये धीरे धीरे पता चल गया कि ये जो हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, कोई शक्ति आके कर रही है। और ये समर्पण भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे कल शाम को भी अमीरचंद भाई जी, जो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बाबा ने क्या कह दिया, ये टुकड़े के लिए क्या लड़ते रहते हैं, छोटे से टुकड़े के लिए तो कितने पत्रकार और सारे लोग आ गए कि बाबा ने, तुम्हारे बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये कमेंट कर दिया ना पॉलिटिकल इशू में, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और भी कहीं हमने सुना था ये बात, और भी एक दो बातें बाबा ने कह दी थी कि जो कि एकदम ऑब्जेक्शनेबल, कि जिससे ये पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो बाबा को जो बताया गया कि बाबा आपने ये ऐसा कह दिया, ये भारत पाकिस्तान तो बहुत सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में आपने ऐसा कह दिया, तो बाबा ने कहा ठीक है मैं शिव बाबा से कह दूंगा ऐसे नहीं कहा करे। तो ये एक तो होता है कि शिव बाबा आ रहा है और वो करा रहा है, ठीक है, परंतु एक है ये ब्रह्मा का अपना पुरुषार्थ है समर्पण का, कि मैं अब कुछ कर ही नहीं रहा हूं, अब सब कुछ वही कर रहा है। ये एक अति सूक्ष्म पुरुषार्थ है, एक तो है कि वो आया और चला गया, पर इसमें अहंकार भी आ सकता है कि वो मुझ में आ रहा है, मेरी सुनो क्योंकि मेरे द्वारा वो कह रहा है। ये तो कहीं बोला ही नहीं है कभी। जो लास्ट में भी कुछ अव्यक्त वाणियां हैं जो हमने सुनी है साकार मूल्या, जिसमें बाबा कहते थे कि बाप इस तन में ऐसा रहता है कि जैसे यहां है ही नहीं। लोगों को लगा ये शिव बाबा बोल रहा है, बाप इस तन में ऐसा रहता है जैसे यहां है ही नहीं, परंतु वो शिव बाबा नहीं, वो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बोल रहा था कि मैं इस तन में ऐसा रहता हूं जैसे इस तन में हो ही नहीं। इतनी अशरीरीपन का अभ्यास, इतना अशरीरीपन का वो पुरुषार्थ था। तो चौथा अध्याय है जीवन का सत्संग, ये ओम मंडली की स्थापना, ये बोर्डिंग स्कूल की स्थापना, आत्माओं को भिन्न भिन्न वैरायटी प्रकार का साक्षात्कार, वहां की अपनी एक दिनचर्या, वहां पर अध्यात्म के साथ और भी दूसरी कुछ बातें सिखाई जाती थी, सिलाई जैसे, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए बच्चों को। ये अपने आप में सामाजिक विषय है कि बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाया जाए। दादी अपना अनुभव सुनाती है, दादी के सभी ऑलराउंडर थे, टर्न बाय टर्न सबका लगता था और सभी को हर एक प्रकार की सेवा करनी होती थी बचपन से ही। छोटी छोटी कन्याओं ने गाड़ी चलाना सीख लिया था, बस चलाना सीख लिया था। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पांचवा अध्याय हमको लगता है कल लेंगे समय हो रहा है, क्योंकि पांचवा अध्याय है विरोध, या विरोध, अवरोध, असहयोग। ये एक बहुत दर्दनाक अध्याय है, बहुत दर्दनाक। बांधिलियों के साथ जो जुर्म सितम हुए उसका शायद वर्णन ही नहीं है। अगर उसका वर्णन करे, लिखे भी नहीं है अभी तक, जगदीश भाई ने लिखा है, इसको लिखा नहीं जा सकता है। इतने वो दर्दनाक है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे, पर उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि आंखों से आंसू आ जाए। कई सारे तो ऐसे हैं कि अनरिटन, कि जिनके साथ ये हुए इनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, पर उनके साथ वो सारी बातें हुई है। कैसे भी करके उन्हें भ्रष्ट बनाना या इस पथ से मोड़ने का ही एक प्रयत्न था। एक तरफ तो लोगों को आश्चर्य था कि पवित्रता की बातें, दूसरे तरफ साक्षात्कार, तीसरी तरफ इनमें ये परिवर्तन, चौथी तरफ इनकी ऊंची धारणाएं, ये सब क्या है? और इतना उनको तंग करने के बाद भी ये छोड़ती नहीं है। पकड़ पकड़ के मांस खिलाया गया। तो ये सुअर का मांस, बांध कर रखा गया। ये सारी लड़ाई पवित्रता की, एक तो आप अगर गंगे दादी का अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने लिखा है। किसी और ने तो ऐसा अनुभव लिखा है कि जो मंत्र तांत्रिकों को बुलाया गया, जादूगर को बुलाया गया, और जो बेड होता है उसके नीचे उसको बांध दिया। तो इसकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे, और आज तो जैसे बाबा के आने का भी दिवस है, तो सारा दिन जितना हो सके मौन में रहना, यज्ञ के इतिहास को भी याद करना, तो दादियों के अनुभव को भी याद करना, तो उन वरिष्ठ भाइयों के दादियों के साथ के और बाबा के साथ के अनुभव को भी याद करना, और ये भी याद करना कि इस जीवन की जो नींव है, जो कुछ इस यज्ञ में हुआ वो पवित्रता के लिए हुआ है, तो हम उस पवित्रता की धारणा में कितने मजबूत हैं, इसकी स्वयं की चेकिंग करना। और फिर शाम को बाबा आएंगे और हम बाबा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। ओम शांति।